पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाभद्रन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवत्पिषाय हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि हा देवी काकू भरगदगदयाद्यवाच जाचे निपत्त भूवि दंडवत उडुभटारति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृपिन्दीव जट्यं जागुदरोचसं विदधतङ्गपट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिनसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेन्दां भक्त्या विहीनापराधम् चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणा गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तनाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय वैराग्यगुरुभक्तिरसं यत्नय्यपायन् मानन् भेप्सु मन्दं कृपाम्बुदिरिजपरमदुःखी सनातनस्तं प्रभुनाश श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं दीनभूतले स्वयं रूपः कदा महिमा ददाति सकदा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम चरणं कल हम लोग बतला रहे थे कि नारद ऋषि गोप कुमार को बतला रहे हैं कि वैकुंठ व्यापक प्रदेश है। वैकुंठ के अंतर्गत ही अयोध्या, जगन्नाथपुरी, द्वारका, मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड सब है। केवल कृष्ण ही नहीं, कोटि कोटि भगवान के अवतार वहां पर है, जो चार युगों में मन्वंतर में ब्रह्मा के परार्ध में, दो परार्ध में, कभी इस परार्ध में कभी उस परार्ध में वो अवतार लेते हैं, किंतु सब ही वहाँ पर। और भक्त लोग अपने अपने भावना के अनुसार में सिद्धि प्राप्त होने पर वहाँ पर अपने इष्ट देव का दर्शन और सेवन करते हैं। जैसे सूर्य हजारों सरोवरों में, जलाधारों में प्रतिबिंबित होता है, हजार जगह। कांच कोई भी प्रतिबिंबित होने वाली चीज हो, उसमें सूर्य प्रतिबिंबित होते हैं। किंतु सूर्य अर्थात बिंब और प्रतिबिंब दोनों एक नहीं है। बिंब माने सूर्य और प्रतिबिंब माने जो दूसरी जगह चमकता है, दोनों एक नहीं है। किंतु कुछ समता है। ऐसे ही भगवान के जितने अवतार हैं, बिंब नारायण हैं और उनके प्रतिबिंब वो हैं अवतार, ऐसा मत कोई समझ ले। प्रत्येक ही जैसे भगवान के अवतार हैं, प्रत्येक ही भगवान है, वो सभी सच्चिदानंद में हैं, इच्छावान हैं सभी। भगवान का वहाँ पर काय व्यूह नहीं, बल्कि भगवान ही सर्वत्र एक होने पर भी विभिन्न रूपों में विराजमान है, भक्तों की इच्छा के पूर्ति करने के लिए। इसलिए वहाँ पर कहीं कहीं पद्मसिक्त रामायण में या कहीं दूसरे शास्त्रों में भी आता है कि एक ही भगवान है, जैसे भक्त प्रार्थना करता है तो वही ब्रह्म लिंह मनुज अवतार। लिंह क्या है चौपाई याद है, लिंह मनुज अवतार देखिए तो। अच्छा ठीक है, पीछे बतलाएंगे। मनुज अवतार लेते हैं, मनुष्य का अवतार, नृसिंह का अवतार, वामन अवतार, कूर्म अवतार, यहाँ तक कि हाय ग्रीव अवतार माने घोड़े का अवतार, इत्यादि बहुत से अवतार हैं। तो भगवान का एक ही रूप है और इतने रूप में आ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान का रूप ही नहीं, जब कोई इस जगत का आदमी उनको पुकारता है तो उसकी भावना के अनुसार में रूप ले लेते हैं, यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। किंतु ऐसी बात तुम लोग मत समझना। उनके जितने भी रूप हैं स्थाई रूप हैं, नित्य हैं और एक साथ में सभी सत्य हैं। जब जब भक्त लोग पुकारते हैं तब तब वही रूप यहाँ आ जाए और सभी शाश्वत हैं और उनमें कोई भी तरह का दोष नहीं है, सभी विशुद्ध और शुद्ध सत्व है। जो लोग अष्टदशाक्षर रूप में लक्ष्मीपति की उपासना करते हैं, नारायण का भी मंत्र एक है अष्टदशाक्षर, फिर एक है ओम नारायणाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये सब मंत्र है। ध्रुव जी इसमें से ये इसको कर करके और वो सिद्धि को प्राप्त हुए। ओम बारहाय नमः कोई कह करके, वासुदेव इत्यादि जो उनकी उपासना करते थे भक्त नवदीप धाम में, उनको बारह देव को पाए। कोई ओम नृसिंहाय नमः या नृसिंह देव के और मंत्र हैं उसको पाया। वैकुंठ में जाएंगे किंतु उस स्पेशल प्रकोष्ठ में जाएंगे, नारायण के यहाँ जाएंगे किंतु नारायण वहाँ पर कैसे बैठे हैं, नृसिंह के रूप में, कहीं बराह के रूप में। और जब जब इस जगत में उस रूप में उनकी आवश्यकता होगी उसी रूप में वो आएंगे। जैसे कृष्ण जब ही आएंगे ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं रूप कृष्ण, तो वो कैसे आएंगे, इसी बंसीधारी के रूप में ही आए, नंदनंदन के ही रूप में ही आए। उनका रूप कभी भी बदलेगा नहीं, एक ही रूप में उनका रूप रहेगा और उनकी लीलाएं होंगी। उसमें कुछ नैमित्तिक लीला बदल सकती है किंतु और विशेष कुछ, गोपियों के साथ नाराज नंद भवन में बाल क्रीड़ा इत्यादि और सब लीलाएं वो नित्य जैसी हैं वैसी। कंस मारण बदल सकता है, कंस मारन, कंस के बदले में कोई और दूसरा हो सकता है, जरासंध वाली लीला हो करके फिर दूसरी कोई हो जाएगी। उस समय तत्सामयिकी जैसे कोई हो गया उसके लिए वो सब नैमित्तिक लीलाएं बदल जाएंगी, नित्य जो लीलाएं हैं वो वही रहेंगी। तो जो लोग नारायण की उपासना करते हैं वैकुंठ में जाएंगे, कौन प्रकोष्ठ में जाएंगे जहाँ लक्ष्मी और महापति। नृसिंह मंत्र से जप करने वाला वैकुंठ में ही जाएगा और वो देखेगा जी यही बस एक ही वैकुंठ है, उसी में हम नृसिंह जी का भजन कर, वो नारायण को राम को और सबको नहीं देखेगा। ऐसे ही वो लीलाओं में जैसे नृसिंह जी की लीला है, बराह जी की लीला है, या कूर्मदेव की लीला है, इनके लीलाओं में अंतर है किंतु तत्व में अंतर इनमें नहीं है। तत्व में कोई अंतर नहीं किंतु लीलाओं में कुछ अंतर हो सकता है। इन्हीं चीजों के लिए बतला रहे हैं ये कि हम लोग समझते हैं कि बराह जी एक हुए, नृसिंह जी एक हुए, या और सब जो अवतार हैं एक हुए, किंतु एक नहीं, रामचंद्र जी त्रेता में आए ना, त्रेता में आए। अब यहाँ से कितना युग पहले, युग नहीं मने हाँ त्रेता युग में आए ना, अभी चल रहा है कली युग, तो दो युग पहले इस त्रेता में नहीं, दो त्रेता युग पहले में आए। ये सब कौन निर्णय करेगा, जो जानते हैं वो लोग निर्णय करेंगे। रूप गोस्वामी ने इस सब का निर्णय किया है। स्वर्ग के अधिष्ठाता जो देवताओं के पूज्य हैं वो चतुर्बाहु विशिष्ट हैं। जिस समय बामन जी नहीं अवतार हुआ था बामन जी का, तो उस समय देवता लोग किसी भगवान की उपासना नहीं करते थे, तो किसकी उपासना करते थे, इसलिए वहां पर चतुर्भुज विष्णु की वो लोग सेवा करते थे। एक क्षेत्र ऐसा उत्पन्न हुआ जिसे बामन जी को विशेष रूप में आना पड़ा। किस लिए आना पड़ा, बलि महाराज जी ने उनका सब कुछ छीन लिया था, स्वर्गपुरी इत्यादि सभी छीन लिए थे। तो उसमें में फिर से तपस्या उनकी देवताओं की मैया अदिति ने की थी, जिससे कि बामन जी का अवतार। इसलिए चतुर्भुज जो रूप विष्णु है वहाँ पर सब समय, उनसे ये बामन जी कुछ लीला में भिन्न है किंतु तत्वतः एक है। इसलिए वहाँ पर बामन जी का कुछ पार्थक्य है उनसे। चतुर्भुज जो वहाँ पर विष्णु हैं उनकी लीलाएं कुछ विशेष नहीं हैं, किंतु इनमें कैसा है, कुछ ठग भी, ठग का भी भाव आया, कुछ कल्याणकारी भी रूप उनमें है। ऊपर से मालूम होता है ठग ना, किंतु भक्त वात्सल्यता यहाँ पर अधिक है ना? दयालु अधिक हैं ये, कौन बामन जी, भक्तों की महिमा बढ़ाने वाले हैं, उनको संकट में डालकर और बलि महाराज जी का नाम सदा के लिए अजर अमर कर दिया। यदि बामन नहीं आते तो बलि महाराज जी का इतना नाम होता, इतना नाम नहीं होता, संकट में डाल। और भक्तों की रक्षा करने के लिए बामन के रूप में 52 उंगली होकर के आए, बड़े सुंदर रूप, और देवताओं की ऊपर से रक्षा करने के लिए, और मालूम होता है असुरों का संहार और उनको छलना करने के लिए आए, किंतु नहीं, दोनों का कल्याण, देवताओं से कल्याण अधिक बलि महाराज जी का हुआ, जो समझेगा वो समझेगा। देवताओं पर अधिक कल्याण उनका नहीं हुआ, किंतु बलि महाराज जी के लिए विशेष कल्याण किया, उनका जगत का विषय छीन लिया और भक्ति दे दिया, इनका विषय नहीं छीना, इनको विषय ही दिया, राज्य दे दिया, तो किस पर दया अधिक हुई। किंतु हम लोग यही चाहते हैं, इंद्र जैसे चाहते हैं, हम लोग भी यही चाहते हैं कि हे प्रभु ऐसी दया करें, हमारे विषय को मत छीनिए, हमें विषय प्रचुर रूप में धन धान्य पुत्र पुत्री कन्या राज्य सुंदरी भार्या सुंदर पति ये सब दीजिए, ये मत लीजिए, आपका भजन भी करेंगे और इसको भी रहने दीजिए। और कोई कहते हैं कि प्रभु इसको ले लीजिए और हमको विशुद्ध रूप में प्रीति दीजिए आपके चरणों में, कौन इसमें ठीक है। जगदीश जी ध्यान लगा करके बतलाइए, तो आंख बंद करके है? कोई प्रेम चाहता है और कोई चाहता है जो प्रेम और आपका भक्ति दोनों रहे, तो कौन था ठीक है? दोनों हाथ में लड्डू रहे वो अच्छा है, एक ही हाथ में लड्डू रहे
अपने अपने अधिकार को, जुधिष्ठिर हमारा ये सब था
नहीं, यदि भगवान कहते हैं। अच्छा तुम विषय भी सुख ले लो और साथ साथ में हमारा विशुद्ध प्रेम भी ले लो, तो कौन था ठीक है, या दोनों में से कोई एक ले लो। यदि दोनों हाथों में भी देते हैं ये विषय भी सुख और भक्त नहीं लेगा, नहीं हमको प्रेम चाहिए, इसको तो हटाई दीजिए नहीं तो बाधा दे देगा, कभी ना कभी छल प्रपंच हो जाएगा। किंतु संसार के 99% लोग यही चाहते हैं, संसार का सुख भी ठीक रहे, हमारे पति ठाकुर भी ठीक रहें, हमारी पत्नी भी ठीक रहें, लड़के भी ठीक रहें, धन धान्य पूरा हो, बिजनेस व्यवसाय भी चले और साथ साथ में भक्ति हो। प्रभु कहते हैं अच्छा, किंतु यही चीज देते हैं उनको, साधारणी भक्ति और विषय देवताओं को देते हैं और जगत के रक्षा में लगा देते हैं। जगत तो अनित्य है, तब प्रभु कहते हैं हमारी ये सेवा करो, ये लोगों को इसी में रस आता है, कहते हैं कि मैं त्रिभुवन का मालिक हूं, अभिमान हो गया, तो उसको ये नौकरी नहीं समझ करके समझते हैं कि प्रभु ने हमें प्रजापति का अधिकार दे दिया, मैं विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो गया, जैसे ब्रह्मा को मालिक बना दिया, वो नहीं समझते हैं कि हमारे लिए ये विघ्न बाधा है ना, इसी को लोला कहते हैं, लोला हाथ में दे दिया, तो इंद्र को लोला भी दे दिया और बलि महाराज जी का लोला छीन लिया और शुद्ध भक्ति उनको दे दिया। इस तथ्य को बहुत से लोग नहीं समझते हैं ना, तब ये बामन जी उन पर विशेष क्रिया कृपा किया, ये अवतरण हो करके पृथ्वी लोक में और ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं की, ये नारायण में नहीं है, वो नहीं कर सकते, वो जो चतुर्भुज वहां पर विष्णु है वो नहीं करेंगे, नारायण कभी भी कभी किसी से छल नहीं करेंगे, जागतिक वो छल नहीं, वो तो है प्रीति, किंतु जो छल दिखने वाला है वो भी नहीं करेंगे, किंतु बामन जी ने ये छल किया लोगों की दृष्टि में, उनसे मांगा तीन हाथ जमीन तीन पैर और लंबे लंबे पैर बना लिए और उनको ठग लिया, लोगों ने कहा असुरों ने कहा जो ठग लिया, और लक्ष्मी जी पीछे सोचा नारायण नारद जी ने क्या देखा, उन्होंने देखा जो विष्णु ही ठग गए, बामन जी ठग गए, ठगने गए और ठग गए, लक्ष्मी जी को भी इसके पीछे से प्रतीति हुई, जो गए तो ठगने किंतु ठग गए स्वयं, ऐसे ये प्रभु विचित्र लीला करते हैं। अब नारायण की सेवा में और बामन जी की सेवा में कुछ तारतम्य हुआ कि नहीं हुआ, भक्त के लिए ऐसी भावों को ये अंगीकार कर सकते हैं, चतुर्भुज वहां पर विष्णु थे वो नहीं करेंगे। इसी तरह से रामलीला में और लीलाओं में नारायण के रूप से कुछ कुछ वैशिष्ट है, किंतु तत्वतः सभी एक है, किंतु लीलाओं में और रस में कुछ वैचित्र्य है। उनका काल कर्म भक्त वात्सल्य इत्यादि में अंतर होता है, शास्त्र इत्यादि में ऐसा कहा गया है कि महाप्रलय में, जब महाप्रलय होता है, महाप्रलय कब होता है? ब्रह्मा जी के द्विपरार्ध में, जब उनका 50 और 50 100 वर्ष बीत जाता है, तो महाप्रलय होता है। उसमें प्रकृति तक भी प्रलय होकर के ब्रह्मा के साथ में गर्भोदशायी विष्णु में लीन हो जाती है, और गर्भोदशायी भी अंतर्ध्यान होकर के समस्त ब्रह्मांड को लोमकूप में लेकर, और वो कर्णदशायी विष्णु के पास में चले जाते हैं, एक हो जाते हैं। जितने जीव हैं उस समय प्रकृति में लीन होकर के विष्णु के अंग में पहुंच जाते हैं, और उस समय में जो जीव मुक्त होने वाले हैं वो ब्रह्मा के साथ में मुक्त होकर के चले जाते हैं वैकुंठ, अन्यथा जहाँ जहाँ उनको जाना है चले जाते हैं, और बाकी जीव कारण रूप में रहते हैं, फिर वहीं से लौट आते हैं, फिर ये सब शरीर इत्यादि लेकर के भोग करते हैं, फिर चक्र चलने लगता है माया का। तो उस समय में महामीन मछली का रूप दिखाई पड़ता है। मार्कंडेय ऋषि थे तो वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते एक दिन गंगा जी स्नान करने जा रहे थे, तो उनके कमंडलू में एक मछली आ गई छोटी सी, तो वो घर लेकर के चले आए। तो मछली घर आने पर कहा, अरे ऋषि जी, मैं आपके कमंडलू में चली आई, किंतु आप जरा देखिए तो कमंडलू में स्थान नहीं है, इसलिए इसको किसी विस्तृत जलाधार में इसको हमें रख दीजिए। देखा सचमुच में वो मछली कमंडलू के आकार का जैसे हो गई, उसमें अट नहीं रही, तो उन्होंने पास के एक जलाधार गड्ढे में उसको। थोड़ी देर के बाद फिर स्वप्न हुआ, ऋषि जी मैं तो इतनी लंबी हूँ कि गड्ढे में मैं नहीं आ रही, तो उन्होंने उठा करके नदी में दे दिया, नदी भी भर गई। उन्होंने कहा जैसे अब तो मैं नदी में भी नहीं आ रही, मुझे समुद्र में दे दीजिए, तो उन्होंने अपने जोग बल से उसको उठा करके समुद्र में दे दिया। समुद्र में दे दिया तो उसने स्वप्न दिया, देखो कल महाप्रलय होगा, ये प्रलय कौन सा? वो प्रलय नहीं, मार्कंडेय जी वाला था वो ऐसा प्रलय नहीं, वो कुछ नैमित्तिक प्रलय था। तो ब्रह्मा जी के जैसे दिन अवसान में होता है, एक रात हुई ना तो रात के समय में भी प्रलय होता है, और ये होता है महा महा प्रलय ब्रह्मा जी के दोनों पदार्थ बीतने पर, और ये प्रतिदिन ये होता है, इसलिए इसको नित्य प्रलय भी कहते हैं। तो समुद्र में डाला तो उन्होंने स्वप्न दिया रात में, कल महाप्रलय होगा, सब पानी से भर जाएगा, उसमें मैं तुम्हारे पास आऊंगी, कोई सोओ मत, खूब ध्यान से सुनो, जो सोएगा सो खोएगा, खूब जरा सीधा तन करके सब लोग बैठिए, स्त्रियां भी पुरुष भी। तो हाँ मैं आऊंगी तुम्हारे पास में, और एक नौका ठीक रखना, जगत में जितनी चीज है सबों का बीज उस नौका में एक एक रख लेना, एक लौकी का बीज, एक आम का बीज, एक नीम का बीज, एक मनुष्य का आत्मा का बीज, एक उसका बीज, माने कोई सरसों, जितने तरह के जीव हैं, चीजें हैं, पौधे हैं, उद्भिज हैं, चिड़िया है, पक्षी है, सबका एक एक बीज तुम इसमें रख लेना, सवेरे तैयार रहना मैं आऊंगा। तो इन्होंने रात में सबकी व्यवस्था कर ली, एक नौका खूब दृढ़ बनाई और उसमें रस्से भी लगा लिए जिसे किसी चीज से बांधना होगा, और सब चीजों का बीज उसमें रख लिया, रख करके तैयार थे। इतने में देखा समस्त विश्व एकदम पानी से भरा, कहीं कोई चीज नहीं दिखती, पानी धीरे धीरे बढ़ने लग गया, और बढ़ते 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 जितने टीले पीले सब जो थे वो सब जहाँ थे ऊंचाई पर था वहाँ तक पानी एकदम पहुँच गया। वो मछली विराट रूप धारण करके, उसके यहाँ दो सिंह थे, कहा जी अब तू हमारे सिंह में अपनी नौका को बांध दे, बस नौका को बांध दिया और उसी पर लेकर के उनको ब्रह्मा का एक रात कितना बड़ा, उतना देर तक ये प्रलय रहेगा। बिना खाए पिए क्लांत हो गए, कहीं कोई जगह नहीं मिली जहां पर थोड़े देर के लिए विश्राम करें। बड़े दुखी हो गए, क्यों हमको इतना जीवन मिला ये दुख भोग करने के लिए, बड़ा दुख हुआ। करते 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 प्रयाग में पहुंचे, वहां पर पहुंच करके वो देखा जी वहां पर कुछ जगह एक पेड़ है, केवल बट का पेड़ है। और बट के पेड़ के एक पत्ते के ऊपर में बट साई विष्णु वहां पर सोए हैं और अपने अंगूठा को अपने मुख में रख करके लीला से पान कर रहे हैं। इनके तरफ में देखा, बड़ी कृपा भर कर इनको आश्वासन दिए और अपनी शक्ति संचरित की, उनको खाने पीने की व्यवस्था कर दी थी तरीके का, और फिर इनको बर दे करके लौटाया, जैसे अब कुछ दिनों में ही अवसान हो जाएगा और इसके बाद में फिर तुम प्रजापति बन करके ये सबकी सृष्टि ब्रह्मा जी करेंगे, इनमें से ले लेगा। एक तो ये हुआ मीनावतार ना, ये मीनावतार हैं, यहाँ पर प्रकट हो गए, बैकुंठ में हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो वही मीनावतार इस जगत में उतर आते हैं। ये नारायण से तत्वतः अभिन्न है, किंतु लीला वैचित्री में कुछ भिन्न है, किंतु है एक ही तत्व। एक मीन वो है जो वेद आदि की रक्षा किए थे, मीन तो मछली में रहती है, असुरों ने वेद को हड़प लिया और महाप्रलय के जल में उसे फेंक दिया, लुप्त हो गया। असुर लोगों की चित्त वृत्ति ही ये महावन्य है, प्रलय का पानी है, उसमें वेद शास्त्र इत्यादि लुप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे अब लुप्त होना आरंभ किया है, लोग आदर नहीं करेंगे, बस क्या होगा, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। अब वेद शास्त्र नहीं मिल रहे, कुछ दिनों के बाद में भागवत नहीं मिलेंगे, कुछ दिनों के बाद में ऐसी कथाएं भी नहीं रहेगी। वृंदावन का भाव बड़ा तेजी के साथ में मथुरा इत्यादि का बदल रहा है ऊपर से, कुछ दिन में आदमी बदल जाएंगे, साधु संतों का आदर नहीं करेगा, गीता भागवत का आदर नहीं करेगा, फिर वो लुप्त हो जाएगा जी। ऐसे ही वेद शास्त्र सब लुप्त हो गए, उनकी रक्षा करने के लिए ये मीन प्रकट होकर के मीनावतार हुआ। ये दूसरा है, वो नहीं ने? एक मीनावतार वो है जो सत्यव्रत मुनि को बचाया था, और सत्यव्रत मुनि ने उसी समय में वो अष्टक जो है ना, दामोदर अष्टक के रूप में उनकी प्रार्थना की थी, और उनको रक्षा करके वो सब चीजों को लेकर के समुद्र में बहुत दिनों तक रहे, और वेद शास्त्र इत्यादि उनके हृदय में था। फिर जब प्रलय समाप्त हो गया तो उनसे चारों तरफ में फिर पड़ गया एक, इसलिए मीनावतार केवल एक ही नहीं है, मछली का बहुत से है, हो सकता है तो अलग अलग हैं, और इनका बैकुंठ में अलग अलग प्रकोष्ठ भी है भक्तों के अनुरूप। सत्यव्रत मुनि के उपास्य यही मीन अवतार है। कूर्म अवतार, अमृत मंथन के समय में देवता और दानव एकत्र हुए और समुद्र का मंथन हो, और इससे जो चीजें मिलेंगी उसको हम लोग बांट लें। विष्णु ने ब्रह्मा के माध्यम से इनको परामर्श दिया, नहीं तो ये कभी नहीं मिलते, तो इसलिए दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे ऐसा संकल्प किया है। तो इसमें मंदराचल को बनाया गया मथनी और रशी शेषनाग, समुद्र में लाया गया और मंदराचल को समुद्र में रखा और रखने के बाद में वो डूबने लग गया, डूब गया। आधार कुछ रहना चाहिए, आधार तो है नहीं, इसलिए मंदराचल वो डूब गया। बड़ी मुश्किल से फिर वो कैसे निकाले इसको, कैसे वहां पर आधार कोई हो और तब फिर इसका मंथन हो। विष्णु की आराधना की तो विष्णु बन करके आए कच्छप कुरमरु। उन्होंने कहा अच्छा तेरे ही कल्याण के लिए मैं कच्छप रूप धारण करता हूँ कुरमरु, और तुम इसी के ऊपर मंदराचल की स्थापना करो और रख करके शेष नाग को उनमें लपेट करके और फिर मंथन करो। शेष की भी उपासना की गई, शेष भी वहां पर उपस्थित हो गए और प्रभु नीचे कुर्म हो करके बैठ गए और उसको मंदराचल रख करके उसको चारों तरफ से लपेट दिया गया वो शेष नाग को, एक तरफ में मुख एक तरफ में पूंछ। देवताओं ने कहा कि हम लोग बड़े हैं इसलिए हम लोग मुख की तरफ लेंगे,
सम्मान के बस्ते
हम लोग सम्मान के अधिक तुम्हारे पात्र हैं। असुरों ने कहा कि नहीं ये सम्मान तमान नहीं चलेगा, हम लोग मुख की तरफ हम ही लोग लेंगे, हम पूंछ की तरफ में घटिया हम लोग नहीं लेंगे। मूर्ख लोग समझ नहीं पाए, देवता लोग चलाकी कर गए। देवताओं ने जिद किया कि नहीं भाई तुम लोग छोटे हमारे भाई हो, तुम लोग दीति के पुत्र हो, इसलिए तुम लोग हम जो ले लेंगे इसके बाद में तुम जो बच रहेगा वो लेगा, तो हम लोग श्रेष्ठ हैं इसलिए मुख की तरफ ही लेंगे। देवताओं असुरों ने जिद पकड़ दिया कि नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हम लोग बड़े हैं छोटे हैं तो क्या है, किंतु गुण में हम बड़े हैं, हम तो मुखी तरफ लें। देवता लोग यही चाहते थे, देवता लोग इसलिए चाहते थे कि हम पूंछ की तरफ लगें, ये बीच बीच में विष युक्त फूंक पुकार छोड़ेंगे और उसमें ये लोग मरेंगे, तो ये तो जानते नहीं, बस लपक करके उन्होंने पकड़ लिया मुख की तरफ। जब घर्षण होता था तो उनको जब गर्मी लगती थी तो विष उद्गार करते थे, तब वो जलने लगते थे, तो खजी बड़े बदमाश हैं जानबूझ करके ऐसा उन्होंने हमारे साथ में चतुराई की, ठीक है अब तो इस बार तो हम लोग नहीं समझे किंतु अब आगे से हम लोग सब समझेंगे, आगे से जो कहेंगे हम लोग कहेंगे जो वही ठीक है। तो मंथन होने लगा तो उसमें पहले 20 इसके बाद में कितनी 10 ना कितने रत्न उसमें निकले, उसी में लक्ष्मी जी भी निकली, उसी में अमृत भी निकला, उसमें धन्वंतरी निकले, ऐरावत गज निकला, उच्चस्वा घोड़ा निकला और सब चीजें निकली। उसी समय में जब लक्ष्मी जी निकली तो चारों तरफ उन्होंने देखा जे किसको वर्ण करूं, तो वो विचार करने लगी इंद्र इत्यादि सभी दोषपूर्ण हैं, शंकर भी अपवित्र हैं और सब ब्रह्मा को देखा, सबको देख करके सबको रिजेक्ट कर दिया। अंत में जब विष्णु वहां पर आए तो विष्णु के गले में माला दे दी और उनके साथ में चले गए। तो एक तो ये कुर्म अवतार है। जिस समय में उनका मंथन होता है और उसका घर्षण होता है और पहाड़ जब घूमता है ना तो उनके पीठ में लगता है ना, तो गड्ढा हो जाएगा ना, इतना बड़ा भारी पर्वत तो रुक खड़ा है। जब चले कोई भी चीज यहाँ पर एक चींटी चलती है ना तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, और वो इतना बड़ा भारी पर्वत जब होता था तो इनको ऐसे लगता था मानो कोई हमको खुजलाहट में कोई, और उस समय में जो श्वास प्रश्वास लेते हैं उनसे ये समुद्र में लहरें ज्वारभाटा उनके श्वास प्रश्वास, एक बार श्वास लिया छोड़ दिया अब उसे वो चलता रहता है इन रोटेशन, नहीं तो समुद्र में क्या कारण है कि उसमें ऐसा है। कोई कहता है चंद्र की गति से समुद्र पर ऐसा होता है, तो इस तरह से है, किंतु शास्त्रकारों ने बतलाया वो ठीक है। और एक है, अच्छा ये तो हुआ किसी समय में लीला, किसी एक युग में या किसी एक मनमंत्र में, उसके पहले ये पृथ्वी इत्यादि को कौन धारण करके समुद्र में रखा है? ये पृथ्वी अभी भी समुद्र के बीच में है, पृथ्वी से कितना गुना वो बड़ा है समुद्र?
तीन
गुण है। ये पृथ्वी सब समुद्र के अंदर में है, इसके चारों तरफ में सर्वत्र पानी है, तो ये इसको धारण कौन कर रखा? यही कूर्मदेव, कूर्मदेव उनको सब समय के धारण करते हैं, और विशेष लीला के लिए उस समय में वो प्रकट हुए। तो ये दो तरह के ये कूर्म हुए ना। अब बराह के लिए कह रहे हैं, सृष्टि के आदि में केवल जल ही जल था, ब्रह्मा जी ने तप तप शब्द सुना और इसके बाद में विष्णु से उनका भेंट हुआ, नारायण से भेंट हुआ और चतुर्श्लोकी भागवत इत्यादि का श्रवण उनसे किया। अब सृष्टि करेंगे किंतु सृष्टि का कुछ आधार तो होना चाहिए, आधार था नहीं, पृथ्वी उस समय जलमग्न थी। उसी समय उनके नाक से छेद से कोई चीज गिरी, बहुत छोटी सी, जैसे घून होता है ना, घून देखा है? घून घून होता है ना, लाल लाल छोटा छोटा होता है, कोई चीज अन्न में वो लग जाता है, छेद कर देता है, सत्तू उस चीज को बना देता है ना? सार अंश ले लेता है और बाकी रह जाता है, जिसको काट देता है वो सत्तू जैसा हो जाता है, असार लकड़ी में लग जाता है। वो बहुत छोटा छोटा होता है और यदि उसको जरा कुछ बड़ा कर दिया जाने तो वो हाथी जैसा होता है, हाथी के शक्ल का ही, जैसे सुअर है कुछ ऐसे तरह। तो वो एकदम छोटे रूप में घून निकला और जो ही निकला उसे डबल हो गया, और जब थोड़ा सा दूर गया नाक से, जितना दूर चला जा रहा है उतना ही लंबा चौड़ा विशाल होकर के देखा जी विशाल रूप धारण कर, यहाँ तक कि समस्त आकाश को वो भर दिया इतना बड़ा, और उसने समुद्र में सीधे छलांग लगाई। उसका ये थुथुन माने मुख नीचे या पैर दोनों नीचे कर दिया ऊपर वाला ऐसे, और उसके बाद में मुख समेत एकदम सीधे उसमें कूदा, और उसकी लहर जो उठी वो स्वर्ग और इत्यादि सबको, ब्रह्मलोक तक सबको डुबा दिया, इतनी बड़ी जोर से उसमें
लहर,
वो
लहर
लहर पैदा हुआ, उसका पानी चारों तरफ में फैल गया और सीधे एकदम कहाँ पहुंचा
पता है, रसातल,
रसातल में पहुंच गया, और वहां पृथ्वी थी, वहां से अपने थुथन पर लिया और लेकर के सीधे पानी के ऊपर में स्थापित। इतना तो ये एक बराह जी है। दूसरे बराह में देखते हैं उनकी कुछ क्रियाएं हैं, जब वो रसातल में गए तो उसी समय में वो हिरण्याक्ष उनको गाली गलौज दे करके, वो अपने समान कोई वीर खोज रहा था, नारद जी से पूछा, फिर गया कुबेर के यहाँ वरुण देव के पास में, वरुण ने कहा जे हाँ तुम्हारे से लड़ने वाले हैं जो तुम्हें चकनाचूर कर देंगे,
मानमर्दन करने वाले,
कहाँ है वो? तो वो विष्णु है, कहाँ मिलेंगे, हैं तो सर्वत्र किंतु खोजने से बड़ा भारी मुश्किल मिलते हैं, कभी मिल जाएंगे तुम्हें, तुम्हारा मान भी मर्दन कर देंगे। नारद जी से पूछा था, नारद जी ने कहा हाँ वो अभी महाप्रलय जो हुआ है इसी में वो पाताल लोग रसातल में जाएंगे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, वहां पर तुमको मिल सकते हैं। तो वहां पहले पहुंच गया डूब करके पानी में और वहां पर प्रतीक्षा कर रहा था, इतने में ये पहुंचे वहां, वहां पर ललकारने लगा, उन्होंने सीधे पृथ्वी को अपने मुख पर दांत के ऊपर में कैसे रखा, जैसे एक विराट हस्ती के यहाँ पर सिर पर कोई एक छोटा सा फूल कोई रख दे हल्का सा ना? ऐसा ही, या सरसों का दाना कोई रख दे ऐसा ही उनको मालूम हुआ, और आकर के पृथ्वी के आकर्षण पर जहाँ पर कि गुरुत्व आकर्षण होता है जल के ऊपर में उसको स्थिर कर दिया और पीछे मुड़े तब तक वो आ गया। भीषण युद्ध हुआ, युद्ध में न जाने कितने हजारों वर्ष लग गए और अंत में प्रभु ने गदा से उसका सिर तोड़ दिया और तोड़ करके और फिर मानमर्दन हुआ। इसके बाद में दिल्ली हो गया। तो ये हो गए दो ना? और एक हुआ श्वेत बराह और एक हुआ कृष्ण बराह। एक हुए यज्ञ बारा क्या, जिनके एक एक लोम में कोटि कोटि पृथ्वी भरी पड़ी है, ब्रह्मांड भरा पड़ा है, वो यज्ञ बारा। यज्ञ जो कुछ होता है वो सब का फल वही ग्रहण करते हैं, ये है यज्ञ बारा। उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी को उन्होंने पुराणों का श्रवण कराया, पुराणों का श्रवण। ये पुराण पृथ्वी को बराह जी ने सुनाया, व्यास जी ने उसी का प्रकाश किया है, इसलिए ये पुराण नित्य है। एक बराह वो है जो भक्तों ने प्रार्थना की प्रभु से, जो पृथ्वी असमतल है, खेती बाड़ी नहीं हो सकती, पानी नहीं ठहरता कहीं, प्रजाएं जीवित नहीं रह सकती हैं बिना अन्न के हैं? और बिना जल के, तो उनको पर कृपा करने के लिए अवतीर्ण हुए और अपने दांतों से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर ऊंची नीची भूमि को समतल कर दिया। उसका स्वभाव ही है ये सुअर का, जहां कहीं ऊंचा नीचा देखेगा ना अपने थुथुन से पहले उसको खोद देता है, जैसे मानो हल चला दिया गया है ऐसे एकदम उसको बना देगा। और उसमें भी कोई यदि कठिन जमीन होगी तो अपने दांत से तोड़ देता है, तो पर्वतों को और सबको बराबर दांतों से तोड़ करके बराबर करके थुथुन से और पृथ्वी को उपजाऊ बनाने के लिए समतन बनाया। उसमें पृथ्वी भी सुकरी रूप धारण कर दिया, भू देवी है ना, ये भी लक्ष्मी है, सुकर जब विष्णु बने हैं तो ये भी सुकरी है। उसी समय में नरकासुर का जन्म हुआ है ना? नरकासुर उसका नाम नहीं था किंतु दुष्ट संग में पड़ने पर एक साधु सज्जन व्यक्ति भी दुष्ट हो जाता है, ऐसा है। यदि साधुओं का संग यदि किसी को अच्छा बना सकता है तो दुष्ट लोगों का संग भी दुष्ट बना देगा। यदि कोरा कागज है तो बुरा भी लिखा जा सकता है अच्छा भी लिखा जा सकता है। यदि कोरा कागज रहे, कोरा हृदय रहे और साधुओं के संग में यदि मिल जाए, तो यदि साधु कुछ नहीं भी कहता है वहां पर जाकर के बैठ ही जाएंगे तो साधुओं के हृदय से जो अटम निकलते हैं, जो भावों के की लहरियां निकलती हैं, जैसे हवा में लहरी होती है, उस लहरी से अपने आप जीवों का कल्याण है। कुछ पूछने की जरूरत, सुनने की जरूरत नहीं, बस उनके पास में बैठ जाओ, उनकी विचारधाराओं का प्रवाह हमें प्लावित करता रहेगा। यदि एक वो धूप काठी होती है ना,
अगरबत्ती
उसमें धुआं निकलता है, आग से वो जलती है, ये धुआं का एक वृत्त होता है, वो हवा में फैलता है हवा के वृत्त के साथ में। यदि हवा ना रहे तो जहां का तहां उसका सुगंध रह जाएगा, इधर उधर जाएगा नहीं जाएगा, किंतु हवा का प्रवाह उसे रथ जैसा लेकर के खींच करके थोड़े दिनों में ही मैंने कहां कहां फैला देता है। ऐसे ही यदि एक धूप बत्ती का अगरबत्ती का सुगंध चारों तरफ में फैल जाता है, हमारे हजार आदमी बैठे हैं तो हजारों आदमियों के नाकों में चला जाता है। तो ये चिन्मय विचार वाले भगवान का भजन करने वाले यथार्थ संत हों तो उनसे कोई सुगंध नहीं निकलती, जरूर निकलती है। इसी वजह से अगस्त ऋषि के आश्रम में सांप और नेवला, बाघ और हिरण परस्पर एक साथ में रहते, वो प्रभा ही ऐसा करते थे। और दुष्ट लोग यदि रहेंगे तो उनकी दुष्टता निकल करके और सबको दुष्ट बना देगी। इसलिए संत समाज में रहने पर यदि साधु कुछ नहीं भी बोलता है, उसके पास में बैठ गए, तो उनका विचार जरूर संक्रमित तो उसमें हो जाएगा। कोई सूर्य चाहे न चाहे सामने बैठ जाए और सूर्य की किरणें पर नहीं पड़ेंगी, यदि सूर्य की किरणें पड़ सकती हैं तो साधुओं के सद्भाव की किरणें भी अपने आप आ जाती हैं। इसलिए साधु यदि कुछ नहीं बोलता है तभी उनके साथ में बैठ जाओ, देखो जो चित्त पवित्र और एकदम भाव में बन जाएगा। यदि उनके समीप बैठने पर भी हमारे विचार नहीं बदलते तो इसका कुछ कारण है। दुष्ट लोगों के साथ में अधिक हम बैठते हैं, उनका व्यवहार करते हैं, ये कारण है। दुष्ट लोगों का संग कैसे होता है? सबसे दुष्ट संगों में मन जो दुष्ट है, इसका संग यदि कोई दुष्ट मन का संग करेगा, इसका प्रभाव अधिक होता है। इसलिए दुष्ट मन का संग मत करो, तब तो ठीक रहेगा, तब तो साधुओं का संग का प्रभाव रहेगा। जैसे देखो, पास में एक टट्टी रखी है, चार पांच दस दिन की सड़ी हुई, या कोई चीज मर गया है, उसकी दुर्गंध बड़ी तीव्र होती है, और वहां पर 10-20 अगरबत्ती भी जलाओ